ओम शांति। बाप दादा की आशाओं को, वायदों को पूरा करने वाले यज्ञ के आधार मुहूर्त, उधार मुहूर्त, महायज्ञ के पिलर समान आदरणीय भ्राता, हम सबके प्यारे, सभी के दिल को जीतने वाले आदरणीय भ्राता निर्वैर भाई जी हम सभी के बीच में उपस्थित है। सभी एक हाथ की ताली से भ्राता जी का स्वागत करेंगे। भ्राता जी, आपका इस सभा में बहुत बहुत तहे दिल से हार्दिक स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आदरणीय भ्राता जी, आप शुरू से ही साकार मात पिता की पालना में पलने का भाग्य आपका निर्माण हुआ है, साथ ही साथ में आप इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के जनरल सेक्रेटरी हैं, साथ में ग्लोबल हॉस्पिटल के आप मैनेजिंग ट्रस्टी हैं, एवं आप एजुकेशन विंग के चेयरपर्सन भी हैं। ग्लोबल हॉस्पिटल, ज्ञान सरोवर, शांतिवन, मनमोहनी वन कॉम्प्लेक्स इत्यादि के निर्माण में, उसकी आध्यात्मिक गरिमा को बढ़ाने में आपका महत्वपूर्ण सदा योगदान रहा है। पूरे भारतवर्ष एवं विश्व के अधिकतम देशों में ईश्वरी विश्वविद्यालय की आध्यात्मिक मशाल लेकर आपने अनेक आत्माओं की ज्योति को भी जगाया हुआ है। ऐसे बाबा के अमूल्य रतन हम सबके बीच में उपस्थित है। हम सबके सामने ब्रह्मा बाप समान कर्मातीत अवस्था इस टॉपिक पर प्रकाश डालेंगे आदरणीय भ्राता निर्वैर भाई जी।
ओम शांति। आज के शुभ दिन, कौन सा दिन है आज? सतगुरुवार भी है और आज कहने में आता है आज बड़ा दिन है, क्रिसमस है आज। तो सभी को पहले तो मैरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर। साकार बाबा की बात सुना रहे हैं तो बाबा का कभी कभी जब ऐसा दिन आता था तो बाबा इशारे में दो शब्दों में कहते थे, क्राइस्ट का और कृष्ण का कनेक्शन है। जब श्री कृष्ण की पहले राजधानी है, धीरे 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 फिर वो क्रिश्चियंस की बन जाती है, फिर उनसे वापस श्री कृष्ण को वापस मिलती है। उस बीच में ये पुरुषोत्तम संगम युग है जिस समय हम सबको बहुत सारी बातों की जानकारी मिलती है। रोज की अगर हम बाबा की मुरली पर पूरा अटेंशन दें तो उससे बहुत कुछ जानने को मिलता है। कितनी बातें बाबा इशारे से सुना देते हैं, आज की मुरली में भी कई प्रश्न के रूप में कुछ बातें बाबा ने सुनाई थी। बार में राम और सीता की बात याद है, मुरली याद है, उसके बारे में कुछ क्वेश्चन थे। लेकिन आज की जो विषय दी गई है, ब्रह्मा बाप समान कर्मातीत अवस्था, तो पहले तो ब्रह्मा बाबा को पूरा जानना जरूरी है। इतना ही कहेंगे कि लौकिक दुनिया के हिसाब से, इससे पहले के ब्रह्मा बाबा का पाठ शुरू हुआ, दादा लेखराज के नाम से जब बाबा मशहूर थे, उस समय बाबा एक डायमंड मर्चेंट होते हुए भी राजा की तरह थे। आज से लेकर के सतयुग आज से लेकर के कलयुग अंत तक वो राजा ही संस्कार बाबा का चलता रहा। लेकिन अंतिम समय किसको कह रहा हूं, बाबा जब 60 वर्ष की आयु में पहुंचे, शरीर की आयु 60 वर्ष हुई, और उसके बाद जो बाबा का पाठ चला उसको सामने रखते हैं, धक से बाबा ने कारोबार को समाप्त किया, और ईश्वरी ज्ञान रत्नों की तरफ पूरा टेंशन चला गया। एक नियम अनुसार कि जब बिल्कुल लौकिक दुनिया के हिसाब से बैगर बने तो सतयुग का पहला प्रिंस बने। इसलिए बाबा ने अपना तन मन धन सब कुछ ईश्वरी सेवा में समर्पित किया। बहनों माताओं के ऊपर जिम्मेदारी रखी, यज्ञ की स्थापना की, स्वयं माध्यम के रूप में शिव बाबा का साकार माध्यम बन प्रजापिता ब्रह्मा का पाठ बजाया। वो पाठ बजाते बजाते बाबा एक तरफ स्थापना का कार्य करते रहे, अनेक बहनों को भाइयों को ऐसा प्रेरणा सिर्फ नहीं लेकिन ऐसा उमंग दिलाया, और शिव बाबा की श्रीमत उनको दिलाई कि जैसे बाबा ने स्वयं को समर्पित किया ऐसे अनेक भाई व बहनें समर्पित रूप से बाबा के यज्ञ में पाठ बजाने के निमित्त बन गए। अगर एक एक जो आदि रतन निमित्त बने उनकी भी एक एक की कहानी अगर सुनेंगे आप तो ब्रह्मा बाप समान उन सब की कहानी है। निश्चय बुद्धि नंबर वन, उस निश्चय बुद्धि के आधार से अपने जीवन को बिल्कुल पावन बनाने का संकल्प लेना, उसमें भी नंबर वन। और फिर दूसरों को आप समान बनाना, जिसको कहा जाता है ईश्वरी सेवा करना, उसमें भी देखा गया कि जो आद के रतन निकले, जिनको आज हम बड़ी दादियां कहते हैं या दादा थे, बहुत थोड़े थे लेकिन उन्होंने अपनी जीवन को इतना सुंदर बनाया, इतना श्रेष्ठ बनाया, इतना दिव्य बनाया कि जिनके भी वो संपर्क में आते थे उनको ऐसी प्रेरणा देते कि फट से शिव बाबा को पहचान कर इस महान कार्य में सम्मिलित हो जाते। उसी का फल है आज इतने हजारों की संख्या में भाई बहने भिन्न भिन्न सेवा केंद्रों पर देश में और विदेश में अपनी जीवन दिव्य बना करके दूसरों की सेवा के निमित्त बन रहे हैं। इस बार गुजरात के भाई बहनों का सेवा का टर्न है, सबसे ज्यादा संख्या में गुजरात के भाई बहने मधुबन में आए हुए हैं। और गुजरात के भाई बहनों का भी मधुबन से बहुत प्यार है, क्योंकि उनको नशा रहता है कि गुजरात में पहला जो सेवा केंद्र स्थापित हुआ था अहमदाबाद में, वो स्वयं साकार बाबा ने अपने सामने खुलवाया था। और निमित्त किसको बनाया था? जानकी दादी को। बल हम लोग बॉम्बे से प्रकाशमणि दादी और रमेश भाई, उषा बहन, हम नलनी बहन सभी वहां से प्रदर्शनी याद करने के लिए अहमदाबाद आए थे, 1966 की बात है। स्टार्टिंग वहां से हुई थी और ऐसे गुजरात के कई सेवा केंद्रों को मदद की जाकर के सभी ने, लेकिन पहले निमित्त जानकी दादी बनी और फिर सरला दीदी को पूना से वहां बुलाया, जो आज गुजरात जोन की इंचार्ज हैं। बाबा ने इतना सबको प्रेरणा दी, सेवा के लिए बहुत उमंग में रखा, इतने तक मैं कहूंगा कि हम सबको जैसे अपने उंगलियों पर नचाते थे। सेवा के साथ साथ साकार बाबा का अपना एक अद्भुत मिसाल है। उन्होंने निमित्त बन, ये नहीं कि वो प्रजापिता ब्रह्मा हैं, शिव बाबा के साकार माध्यम हैं और उसके कारण वो संपूर्ण बन गए, संपन्न बन गए, ऐसा नहीं। लेकिन बाबा ने स्वयं का मिसाल हम सबके सामने रखा कि जो शिव बाबा की शिक्षा मिलती है उसको अच्छी तरह से, भिन्न भिन्न शब्द हैं लेकिन उसको विचार सागर मंथन करके उसकी गहराई में जाना, उसकी महीनता में जाना, वो बाबा ने बहुत हम सब के सामने अपना एक मिसाल कायम किया। हर दिन जब मुरली पूरी होती, मुरली के बाद बाबा ईशु दादी की ऑफिस में बैठ करके, बाबा अपनी ऑफिस नहीं कहता था, ईशु दादी की ऑफिस, वहां बैठ करके फट से जो मुख्य सेवा में निमित दादियां या जगदीश भाई, रमेश भाई, जो भी जहां जहां थे, ब्रिजमोहन भाई, सबको फट से पत्र लिखते और उस दिन क्या बाबा ने, शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के द्वारा ज्ञान की नई ताजी ताजी पॉइंट्स, जिनको हम कहते हैं, उसको बाबा कहते थे ताजा माल दिया है, ज्ञान रतन दिए हैं, वो बच्चों को फट से भेज देते। आजकल ईमेल के द्वारा तो बहुत जल्दी पहुंच जाता है लेकिन उन दिनों में तो ईमेल का सिस्टम नहीं था, टेलीफोन भी करने में बहुत टाइम लग जाता था, पोस्ट से ही भेजते थे। हफ्ते में 7 दिन पोस्ट आती थी और उधर से भी 7 दिन उसका उत्तर बाबा के पास आता था, चाहे बॉम्बे हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे और स्थान हो। तो एक तरफ तो बाबा को जो निमित्त बच्चे हैं उनको ज्ञान रत्नों से भरपूर करने का संकल्प सदा रहा, जिसको आप शब्द दे सकते हैं सेवा, बच्चों की सेवा। और दूसरी तरफ बाबा को एक स्वयं के बारे में, बाबा हमेशा कहते थे जैसा कर्म मैं करूंगा मुझे देख और करेंगे। तो बाबा ने तपस्या में अपने आप को बहुत बहुत गहराई में ढाल दिया, इतने तक कि शिव बाबा को अपने से अलग नहीं करना चाहते थे। हर समय बाबा उनके साथ, उनको महसूस होना चाहिए। और हम जब बाबा से मिलते थे, बाबा की दृष्टि मिलती थी, एक सेकंड में वो नशा चढ़ जाता था, अलौकिकता आ जाती थी, दिव्यता आ जाती थी। और जब हम बाबा को कहते थे बाबा आपके, आप निमित्त हैं, आप कहते हैं आप निमित्त हैं पर आपके साथ तो शिव बाबा सदा है, तो बाबा कहते थे नहीं बच्चे ऐसे नहीं है, बाबा को भी शिव बाबा को याद करना हो। बिना याद किए बाबा मेरे साथ नहीं रहता है। आप बच्चों को भी याद करना है तो मुझे भी याद करना है, और याद की यात्रा शब्द ही इसीलिए आया। यात्रा का भाव है डिस्टेंस कवर करना, आगे बढ़ना, किसी निशान पर पहुंचना। तो बाबा ने अपना इस याद की यात्रा का निशान बहुत क्लियर अपने मन में रखा था कि मुझे कर्मातीत अवस्था को पाना है। कर्मातीत का अर्थ सभी समझते होंगे, जो भी कर्म का हिसाब है पुराना वो सब भस्म होना चाहिए। पुराने हिसाब किताब के कारण कोई रुकावट ना आए, आत्मा बिल्कुल अपने आप को स्वतंत्र महसूस करे और उसके साथ साथ समय के अनुसार मनसा सेवा, जो बाबा चाहता था कि सारे विश्व की आत्माओं तक ये बाबा का सकाश पहुंचे, ऐसी सेवा बाबा के मन में सदा रहती थी। जिस समय भी कभी बाबा फ्री बैठते थे, चाहे अपने रूम में चाहे अपने झोपड़ी में, तो वहां पर भी एकांत में बैठ करके एकदम ऐसा गहराई में चले जाते, उनके पास जाके कोई बैठे, हिम्मत नहीं होती थी कि बाबा को डिस्टर्ब कर सके। बल्कि जो पास बैठेगा वो भी उड़ जाएगा, बाबा के पास बैठे बैठे उड़ जाते थे। और उड़ जाने का भाव क्या, आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप में, अपनी ओरिजिनल अवस्था में आ जाती, बाप समान अवस्था में आ जाती, और उस समय का जो अनुभव वो अति इंद्रिय सुख का अनुभव होता। उस समय कोई अपने ऊपर बोझ महसूस नहीं होता, उस समय कोई कर्म के हिसाब किताब की बात मन को नहीं खींचती, उस समय कोई अपने लौकिक मित्र संबंधियों की बात या उनके कनेक्शन की बातें मन में नहीं आती, बिल्कुल आत्मा स्वतंत्र अपने आप को महसूस करती। ऐसी स्थिति के अनुभव में बाबा कहते थे, जब ऐसा अभ्यास करते 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 उसको बढ़ाते जाएं, आठ घंटे का लक्ष्य बाबा ने दिया था, जब आठ घंटे तक उसको ले जाएंगे 24 घंटे में से, तो कर्मातीत अवस्था को पाएंगे। लेकिन बाबा ने हमेशा ये अपने सामने लक्ष्य रखा कि निमित्त साकार बाबा है, इंजन की तरह बाबा है। अगर साकार बाबा ये खुद करेगा तो बाबा को देख करके बच्चे भी करेंगे। और इसलिए बाबा कहते थे, बच्चे फॉलो फादर। बाबा को देख करके मम्मा ने भी इतना पुरुषार्थ किया, उन्होंने भी कम नहीं किया था। और फिर साथ साथ हम देखते थे दीदी मनमोहिनी, दादी प्रकाशमणि, अन्य दादियां, सभी सब ने अपने अपने जीवन में, एक एक का वर्णन करें तो बहुत बड़ा संग्रहालय बन जाए एक। लेकिन हरेक ने इतना पुरुषार्थ किया, आज आप सबके सामने मिसाल है। दादी गुलजार जी का छोटेपन से ज्ञान में आ गई, और बाबा ने ऐसी पालना दी इन आत्माओं को कि दुनिया की और बातों से बुद्धि हटी रही है। उस तरफ जैसे मन जाता ही नहीं उनका, जब देखो उसी लगन में बैठे हैं, जब देखो मुरली का अध्ययन कर रहे हैं, और या तो जो कोई सामने आते हैं तो बड़े प्यार से बाबा की याद में दृष्टि ऐसे देते हैं, क्या महसूस होता है दादी से जब मिलते हैं, तो गुलजार दादी से जब मिलते हैं तो क्या महसूस करते हैं उस समय, हैं? दादी नहीं पर बाबा सामने बैठा है। तो ये हम सब के लिए बहुत सुंदर मिसाल हैं, एग्जाम्पल हैं कि हमें अपने पुरुषार्थ को किस तरह से आगे बढ़ाना है। मोटा पुरुषार्थ जैसे शुरू में चार्ट लिखने का, मुरली के पॉइंट्स लिखने का, मंथन करने का, सेवा का भी थोड़ा किसी न किसी एक आत्मा को भी परिचय देने का, बिगिनिंग में तो ये सब होता है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं महीनता में जाते हैं तो उसमें देखा गया है कि हर आत्मा को केवल बाबा की बात नहीं, केवल मम्मा की बात नहीं, केवल दादी की बात नहीं, हर आत्मा को जिसको ये लगन है कि मुझे बाप समान बनना है, उनको सबसे प्रिय कौन सी चीज लगेगी? साइलेंस। जितना साइलेंस में मन को ले जाएंगे उतना मनमना भाव होना सहज होता है। मनमना भाव का अर्थ है बाबा के साथ मन लगा रहेगा, मन में और कुछ नहीं आएगा। आज की मुरली में बाबा ने थोड़ा सा आत्मा के स्वरूप के बारे में कुछ वर्णन किया, सुना था कितनी बड़ी है बिंदी, छोटी है बड़ी है, यहां छोटी है ऊपर जाके बड़ी हो जाती है या ऊपर छोटी है यहां आके बड़ी हो जाती है, याद है? बिंदु बिंदु ही है, आत्मा स्टार की तरह है, तारे की तरह है, महीन है, सूक्ष्म है, पर उसको महसूस करना और महसूसता में भी उसके वास्तविक स्वरूप में स्थित हो जाना, उस स्थिति में आत्मा को अपना अनुभव हो, निज स्वरूप का अनुभव हो, और वो अनुभव इतना दिल को छूने वाला हो, इतना दिल को एक बहुत क्या कहें कीमती महसूस होता हो, ताकि उससे जो दूसरी बातें हैं जिनके साथ हमारा कोई कनेक्शन नहीं होता है, कोई लेना देना नहीं होता है, हम व्यर्थ की बातों में अपना समय गंवाते, उससे बुद्धि बिल्कुल हट जाती है। समय की क्या वैल्यू है उसका पता लगता है। बाबा वाले कहते हैं बच्चे ये एक एक सेकंड आपका एक साल के बराबर है, पर हम बच्चे क्या सचमुच उसको रियलाइज करते हैं? जैसे बाबा ने समय की वैल्यू कि इस पुरुषोत्तम संगम युग में इस समय एक एक सेकंड जो है वो एक वर्ष के बराबर है, एक सेकंड गंवा दिया अगर व्यर्थ तो हमने एक साल गंवा दिया, जैसे ऐसी धारणा, ऐसी महसूसता और ऐसी गहराई में जाना, उसका समय है ये। ये समय गपशप में दूसरी बातों में गंवाने का नहीं है। जब सेवा है तो सेवा करिए, उसमें भी अगर स्थूल सेवा है हाथ से स्थूल सेवा करिए, लेकिन मन तो फ्री है। और बाबा कहते हैं अगर मन मना भव होते हुए बाबा की याद में रह करके सेवा करेंगे, बाबा की याद में रह करके रोटी बनाएंगे, बाबा की याद में रह करके सब्जी बनाएंगे, वो याद की शक्ति उस रोटी के अंदर, उस सब्जी के अंदर वो भी भर जाएगी, जिसके पेट में वो अन्न जाएगा, जिसके पेट में वो सब्जी जाएगी उसको वो बहुत मदद करेगी। आज इतने भाई बहने आकर के किचन के अंदर सेवा करते हैं। सेवा करना माना बाबा की याद में रह करके इस तरह से सेवा करना कि खाने वाले को महसूस हो, उसको संतुष्टता हो, उसको बल मिले, उसको बाबा की शक्ति मिले और उसका मन बाबा के साथ सहज लग जाए, तब ये सिद्ध कर सकेंगे जैसा अन्न वैसा मन। तब सहज रीति ब्राह्मणों के हाथ का बना हुआ भोजन, जिसके लिए बाबा कभी कभी मुरली में सुनाते हैं, ऐसा भोजन जो देवताओं को भी अच्छा लगता है। देवताएं शब्द कहने में आता है, तरसते नहीं है, पर देवताएं भी उसको पसंद करते हैं। तो इन बातों को जब हम सामने रखते हैं, इस बात को ही सामने, मैं बाबा को सामने ला रहा हूं, साकार को, साकार बाबा ब्रह्मा भोजन का भोग लगा हुआ पहले, वो भोग लगा करके फिर ब्रह्मा भोजन में मिक्स करके फिर जब भोजन करते थे तो साइलेंस में करते थे, बाबा की याद में। हमेशा कहते थे, मैं शिव बाबा को कहता हूं आप आओ मेरे साथ बैठ करके खाओ, मैं जानता हूं वो वासना लेते हैं, वो खाते नहीं हैं, लेकिन मेरा फर्ज बनता है कि जो मुझे खिलाने वाला है मैं उनको अपने साथ खिलाऊं, उनको उनका आह्वान करूं। इतना एक महीनता से बाबा उस बात को लेकर के बहुत साइलेंस में बैठ करके भोजन करते थे, कोई बातचीत उस समय नहीं करेंगे। हम बच्चों को साथ भोजन कराते थे शुरू में, एक हमें याद दिलाने के लिए बहुत प्यार से दृष्टि दे करके गिट्टी खिलाएंगे, अपनी थाली में से खिलाएंगे, लेकिन जब भोजन शुरू कर देंगे तो उसके बाद बिल्कुल साइलेंस में पूरा टाइम बैठ करके भोजन करेंगे और जो साथ में भाई बहने भी होंगे उनको भी वो वाइब्रेशन मदद करता था। तो बाबा को कर्माती स्थिति ऐसे ही नहीं प्राप्त हो गई, बाबा एक हम सबके सामने एग्जाम्पल है कि पुरुषार्थ की विजय कैसे होती है। पुरुषार्थ किया तो प्रकृति पर जीत हुई, पुरुषार्थ किया तो पावन बने, पुरुषार्थ किया तो इतने श्रेष्ठता को प्राप्त किए। इसलिए बाबा कहते हैं फॉलो फादर एंड मदर, बाबा के कदम पर कदम रख करके। इस बातों को ध्यान में रखेंगे अगर, है बड़ी छोटी छोटी बातें लेकिन इसके अंदर महीनता बहुत है, इसके अंदर राज बहुत है। और उसमें इतना भी जरूर साथ में रहेगा कि जो भोजन ब्राह्मणों के हाथ का बना हुआ है उसके लिए वो रसद आई कहां से, उसका भी बड़ा ध्यान रहता है। जो सच्चे ब्राह्मण हैं उनकी कमाई में से वो आना चाहिए, ये भी बहुत राज है। तो ऐसी ऐसी बातों का बाबा ने बहुत ध्यान रखा और उसमें अपने एक लक्ष्य को सामने रखा। हम सब आत्माओं को भी इस बात का ध्यान में चाहिए कि जैसे ब्रह्मा बाबा ने अपने जीवन का लक्ष्य बनाया था कि मुझे इसी जन्म में इसी जीवन में कर्मांतीत स्थिति को प्राप्त करना है, ऐसे ही फॉलो फादर, हम बच्चों को भी ऐसा लक्ष्य अपने जीवन में चाहिए। तब देखेंगे कि ऐसी लगन, उस लगन में इतना मगन रहेंगे आप कि आपको दूसरी बातों में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं रहेगी। जैसे दूसरी बातें ऐसे लगता है कि ये सब क्या बच्चों का खेल, उसमें मुझे क्या करना है। और बड़ा सुख है उसके अंदर। सच्ची पूछो तो ब्राह्मण जीवन का सच्चा सुख गहराई में जब बाबा की याद में मन टिक जाए, काफी समय उसमें रमण करते रहें, उसका आनंद लेते रहें, वो है सच्चा ब्राह्मण जीवन का सुख। और उसमें ही कर्मातीत अवस्था नजदीक आती, क्योंकि बहुत अंदर से लाइट हो जाते हैं। जितना लाइट होंगे उतना लाइट, लाइट की स्पीड कितनी है सुनिए कभी, 186,000 माइल्स पर सेकंड, वो स्थूल लाइट की बात है। और यहां आत्मिक लाइट की तो संकल्प, संकल्प किया और पहुंचे। तो इसी तरह से अपने सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य को भी सामने रखते हैं, उसका भी संकल्प रखना जरूरी है। जो बनना है बाबा उसके लिए कहते थे आई एम दैट, मैं वो हूं, मुझे उसी का लक्ष्य है, वो हूं। और उस जब ऐसा महसूस करेंगे तो लक्षण भी ऐसे आ जाएंगे। तो फॉलो फादर करना है, बाबा की तरह कर्मातीत बनना है, इसका लक्ष्य अपने पास बड़ा पक्का चाहिए। और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प चाहिए। अगर दृढ़ संकल्प नहीं है तो बीच बीच में थोड़ा ढीलापन आ जाता है। चलते चलते बहुत अच्छी स्पीड से चलते होते हैं, फिर छोटी सी कोई विघन, बीच में विघन की बात आई तो वहां ढीले हो गए, वहां स्पीड कम हो गई, वहां कुछ ना कुछ रास्ता इधर उधर चले गए, उसमें बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। पुरुषोत्तम संगम युग का बहुत समय तो निकल चुका है, कितने साल हो गए हैं, 1937 कह लो, पहली जनवरी 1937 जो ऑफिशियल डेट है जब बाबा ने ओम मंडली स्थापित की। ओम मंडली, वो बहुत अच्छा बाबा का लेटर लिखा हुआ है, मैं लखीराज ओम मंडली माता के चरणों में अपना तन मन धन सब समर्पित करता। और उसकी डेट लिखी हुई थी 18/1/1937। तब से लेकर के आप देखिए, अब ओम मंडली ऑफिशियल नाम उसको मिला बाद में, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय। और फिर बाबा के थोड़े इशारे ये भी मिलते थे कि ब्रह्मा का कितना माना जाएगा, 100 साल। तो 100 साल के हिसाब से समय बहुत थोड़ा रहा है। इस थोड़े से समय में अपनी मंजिल को प्राप्त करना है तो फॉलो फादर, बाबा को फॉलो करना होगा, तब स्टेप बाय स्टेप चलना होगा। पहले है कर्मातीत अवस्था को पा करके फिर कहां जाएंगे, बाबा कहते पहले फरिश्ता बनेंगे और उसके बाद बाबा के साथ परम धाम निवासी बनेंगे। थोड़ा टाइम के लिए वहां रहेंगे, फिर बाद में आकर के अपनी राजधानी में सतयुग में राज करेंगे। तो ये यात्रा, इसको कहा जाता है याद की यात्रा, वर्तमान ब्राह्मण जीवन, ब्राह्मण से क्या बनेंगे फिर, बीच का भूल ना जाना, क्या बनना है, कर्मातीत, पहले कर्मातीत बनना है, फिर कर्मातीत से फरिश्ता बनना है, फिर फरिश्ता से बिंदु बन करके परमधाम निवासी बनना है, फिर शिव बाबा कहता फिर मैं तो नहीं आऊंगा सत्ययुग में, आपको बच्चों को भेज दूंगा बस, पर उसमें कितने देर के बाद आना पसंद करेंगे, थोड़ा टाइम तो रहना चाहिए ना बाबा के पास, शिव बाबा के पास ज्यादा समय रहना चाहिए या कम समय रहना चाहिए, बाबा कहता है वहां क्या करोगे मेरे पास बैठ करके, ज्यादा थोड़ा टाइम वहां रह करके फिर अपनी राजधानी में आना है। तो ये ऐसी रमणीक बातें हैं, इनको बुद्धि में ला करके, लेकिन इसके साथ साथ ये ना भूलना कि पास्ट को भस्म करने के लिए बहुत महीनता से, गहराई से बाबा की याद का अभ्यास करना है और उसमें बहुत आनंदित रहना है, बड़ा लाइट रहना है, खुश रहना है, मौज में रहना है। अगर कोई कहे ना मैं याद में बैठा था या बैठी थी लेकिन मेरे को सिर दर्द हो गया, सिर दर्द किस बात से होता है, व्यर्थ से सिर दर्द होता है, याद में बैठेंगे तो उसको व्यर्थ नहीं कहेंगे, याद में बैठेंगे तो बाबा के याद का तो आनंद आएगा आपको, अगर सिर दर्द हो गया तो फिर वो याद नहीं है। उस बात को पक्का कर लो, याद से मन खुश होगा, याद से मन लाइट होगा, याद से फरिश्ता स्वरूप तक पहुंच जाएंगे, उड़ती कला में चले जाएंगे। इसलिए बहुत बहुत अपने को खुशी में लाना, लाइट रखना, और फिर लाइट के बाद क्या है, राज करने की शक्ति चाहिए ना, फिर माइट भी तो चाहिए, तो माइट आती है फिर एक ज्ञान से और दूसरी याद से, क्योंकि बाबा की सर्वशक्तिवान की याद से ही हम सर्वशक्ति स्वरूप बन सकते हैं। तो ये अभ्यास बाबा ने करके हम सबके सामने अपना जैसे मिसाल कायम किया, हम बच्चों का काम है बाबा के कदम पर कदम रखना, बाबा को फॉलो करना, बाबा को हमेशा अपने मन के दर्पण के सामने रखना, और बातों में ना जा करके, बाबा की जो जीवन कहानी है उसको पढ़ो आप, यज्ञ की जो कहानी है उसको पढ़ो, और इसके साथ साथ खुद का अभ्यास भी करो। मुरलियां सबसे श्रेष्ठ चीज है, साकार भी अव्यक्त भी, ये सबसे श्रेष्ठ साधन है बाबा को यथार्थ जानने का, किसी को उसकी पर्सनैलिटी को जानना हो तो उनकी लेखनी, उनकी किताबें, उनकी जीवन कहानी, जो कुछ उन्होंने लिखी होती है उसको जितना कोई अध्ययन करते हैं उतना उसका पता लगता है। तो हमारे सामने तो देखो बाबा ने इतना खजाना दिया हुआ है, कितनी मुरलियां साकार के द्वारा, कितनी मुरलियां अव्यक्त बाप दादा की, उन सब को अगर सामने लाएं और उसको अच्छी तरह से अध्ययन करें, वो बुद्धि में रहे, तो आप स्वयं को महसूस करेंगे जो बाबा कहते थे, इस सृष्टि पर सबसे धनवान कौन है, कौन है, हम बच्चे। उस समय तो बाबा ने अखबार में निकलवाया था सबसे धनवान कौन है, फिर खुद जवाब लिखा था ओम मंडली। तो ओम मंडली ये क्या है, आप क्या हैं, ओम शांति कहते हैं एक दो को, तो क्या हो गए आप, कौन सी मंडली हो गए, ये ओम मंडली नहीं तो और क्या है? तो ओम मंडली, आज इतने भाई बहने आप देखो, सब कमाने वाले। तो हमेशा अपने आप को ओम मंडली के आदि रतन समझ करके और फिर ऐसा अभ्यास करें, इसी जीवन में एकदम जैसे साकार बाबा ने अपना लक्ष्य प्राप्त किया, हम भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। ओम शांति। अभी क्या करेंगे? 10-15 मिनट थोड़ा बाबा के साथ मन लगा करके बैठे, अभ्यास करके देखें कितना आनंद आता है। कर्मातीत स्टेज क्या है उसका थोड़ा चखाचुखी तो करें। जिनको बहुत जरूरी उठना है वो उठ के खुशी से जाएं, लेकिन फिर बाकी सब जब तक मेडिटेशन करनी है 15 मिनट, फिर कोई ना उठे बीच में, तब आनंद आएगा आपको। आज के इस क्लास का जैसा विषय है उस अनुसार बाबा का चित्र आपके सामने है। ब्रह्मा बाबा का चित्र है, ऊपर से बाबा है। तो जैसे आज आपने मुरली सुनी, कल की मुरली सुनी, दोनों को साथ साथ शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों आत्माओं को साथ साथ उस माध्यम के द्वारा अपने मन के सामने लाओ और स्वयं को उनके सन्मुख महसूस करो, जैसे कि साकार में बाबा के सामने आओ, बाबा के रूम में बैठ करके बाबा से दृष्टि ले रहे हैं इतना समीपता से, और वहां से फिर धीरे धीरे सूक्ष्म वतन में चलना। साकार वतन से फरिश्ता स्वरूप धारण कर, बाबा के ब्रह्मापुरी में पहुंचे। फरिश्ता स्वरूप में बाप दादा को भी फरिश्ता स्वरूप में सन्मुख देखते हुए एकदम लाइट। बाबा से मन ही मन में बात करें, इतना सहज है आपके वतन में आना। आपके समान लाइट स्वरूप, फरिश्ता स्वरूप में आपसे मिलना, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव इस फरिश्ता स्वरूप में ही है। अब इस चमकीली ड्रेस को भी छोड़कर हम आत्माएं बाप दादा के साथ अपने प्यारे परम धाम में ब्रह्मांड में अंडे के समान चमकते हुए तारे, इसलिए नाम ब्रह्मांड। अपनी कर्मातीत स्टेज में स्थित
बजती है। शिव बाबा अपने